जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समये ताराय स्वानुभूत्या सदासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमनोभमङ्गलिं पत्ये ओच्छां समयपावद तीवा गाथाएं हैं 308 से 320। पुनः अपन उनका वाचन करेंगे ताकि विषय वस्तु समग्र रूप से अपने ख्याल में आ जाए। 308 से प्रारंभ करना है। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्यो है जगत में सत सादि पर आयो सिकंदक अनन्यो जीव अजीव के परिणाम जो उपजे न आत्मा कोई से जिससे न आत्मा आय है उपजावता नहीं कोई को जिससे का कारण जीवन से कर्म आश्रित हो
प्रकृति स्वभाव सुख है
311 गाथा की चर्चा अपनी दोपहर में आगे बढ़ी थी। 308 गाथा में द्रव्य जिन गुणों से उपजता है इसकी चर्चा काफी अपन कर चुके हैं। द्रव्य का स्वभाव प्रणमन करना भी है, भी इसलिए लगाया कि अपन लोगों का वातावरण अपरिणामी की चर्चा का ही मुख्य रहता है। देखिए ज्ञान पक्ष जो है, तत्व की निर्णय वाली जो भूमिका है, यदि उसमें जरा भी मचक आ जावे, एकांत आग्रह हो जावे, तो फिर वो दृष्टि का विषय भी हाथ में नहीं आता है। इसलिए यथार्थ निर्णय की बदल बात चलती है तो अनेकांत वस्तु स्वरूप का निर्णय आवश्यक है, ये समझना चाहिए। अपन श्रीमद जी के उस बात को याद करें, अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति सेवा है। तो अनेकांत की उपयोगिता क्या है, अनेकांत की सार्थकता किसमें है? वस्तु स्वरूप का निर्णय करके सम्यक एकांत तक पहुँचने में है, उसमें अनेकांत को जानने का कहाँ निषेध है, उसमें अनेकांत में उलझने का निषेध है। द्रव्य से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, द्रव्य से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, तो निर्णय क्या निकला? पर द्रव्य से ऐसा है, ऐसा निर्णय करने के बाद अब कोई प्रश्न ही नहीं ऐसा कार्य। ऐसी चर्चा एक बार आई थी कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये समझ दूर रहकर अपन कैमरे से फोटो खींचे प्रमाण से तो बात गलत तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? जिसे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता है ऐसा अनुभव हुआ और वो पर्याय दृष्टि से भी शुद्ध हो गया, उसकी पर्याय भी शुद्ध हो जानी चाहिए ना। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है लेकिन पर्याय में तो मिथ्यात है कि नहीं? अरे गजब हो गया, तुमको द्रव्य दृष्टि की शुद्धता दिख गई तो भी पर्याय में मिथ्यात है, हैं? ये कैसा द्रव्य देखा तुमने? तो इस तरह सब बातों को चारों पड़कों से समझने की बात है। यहाँ द्रव्य अपने परिणामों से अनन्य है, तदरूप है। इसका अर्थ है कि पर वस्तु को तो किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करता, और जीव जीव के जो परिणाम शास्त्रों में जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, ये परिणाम भी जीव और अजीव है। जीव के परिणाम जीव हैं, अजीव के परिणाम अजीव हैं, इसलिए मैं इसको कर्ता कर्मजीत आयत नंबर 2 बोलता हूँ। आपको याद होगा कर्ता कर्मजीत आयत में जब 86 में प्रश्न किया गया है कि ये आप कहते हैं मिथ्या, अज्ञान, असंयम, ये 3 तरह का परिणाम विकार है। आप एक बार बताओ ये क्या है, ये जीव है कि अजीव है? मिथ्या की गणना उसकी एंट्री करना होगा तो किस में करें, जीव में से अजीव में? बहुत से लोग जानते होंगे सब अपन समय काल के रसिक और स्वाध्यायी बैठे हैं अंदर, देखो जीव में जो मिथ्यास होता है वो जीव मिथ्यास है, अजीव में जो मिथ्यास होता है वो अजीव मिथ्यास। अजीव में भी होता है मिथ्यास, अजीव भी मिथ्या दृष्टि होता है, हम तो सोचते थे जीव ही होता है मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसका मिथ्यास पुद्गल का परिणाम है, वो जीव में उत्पन्न होने वाला पौद्गलिक परिणाम है। जैसे भारत की सीमा में भारत विरोधी तत्व घुस जाते हैं आतंकवादी लोग, वैसे वो पुद्गल ने एक आतंकवादी भेज दिया जीव के परिणामों में। हम तो वो समझते थे भैया, इसलिए तो कहते हैं आगम की नींव पर अध्यात्म का महल बनता है। उसमें कर्म के उदय में जो उसमें रस विपाक, कर्म का विपाक दर्शन भोग की प्रकृति में विपाक काल में जो उसमें अनुभव उदित होता है वो भी मिथ्यात्व है। एक बार मुझे लालचंद भाई ने ये बात जयपुर शिविर में बताई थी कि देखो इसमें लिखा है पुद्गल में भी मिथ्यात्व होता है, वो उसका भाव कर्म है। जीव में होने वाला मिथ्यात्व वो जीव का भाव कर्म है, पुद्गल में होने वाला मिथ्यात्व वो पुद्गल का भाव कर्म है। इस तरह ये मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम ये जीव के परिणाम है वो जीव जानना, और पुद्गल के परिणाम है उन्हें अजीव जानना। सतासी, अठासी, नवासी, फिर वो स्थिति मई के उदाहरण से फिर बहुत बढ़िया विस्तार उसको किया। हमने कोशिश की थी जयपुर शिविर में पूरा कर्ता कर्म विचार लेने की, लगभग 90 तक आए थे। अब वो चर्चा इधर है कि जीव के परिणाम को जीव जानो, इसमें कोई मिथ्यात्व को हमने जीव का स्वभाव मान लिया कि उसको चैतन्य स्वरूप में मिला दिया, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। स्वभाव और दुभाव के भेद ज्ञान की क्लास अलग है और जीव और पुद्गल के भेद ज्ञान की क्लास अलग है, दोनों प्रकरण अलग अलग है, प्रयोजन दोनों का एक है। पुद्गल को भी भिन्न जानने का प्रयोजन है वहाँ से दृष्टि हटा के चैतन्य में लाना, और स्वभाव दुभाव से भिन्नता जानने का प्रयोजन है वहाँ से दृष्टि हटा के स्वभाव में आना। प्रयोजन जो अटकने के स्थान बहुत है ना, तो जहाँ जहाँ मुख्यतः अटका है वहाँ से भेद ज्ञान की चर्चा चलती है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। है उपजे न आत्मा कोई के, ये सब दोपहर में पढ़ा था अपन ने, इससे न आत्मा कार्य है क्योंकि आत्मा किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ। आचार्यों के समक्ष तत्व ज्ञान के रहस्यों को खोलने की एक बहुत गुरुतर जिम्मेदारी तो थी ही, और उन्होंने निभाई बखूबी। इन मतात के सामने भी फेस करने की जिम्मेदारी उनकी है। सांख्य मत है, बौद्ध मत है, निर्यायिक मत है, वैशेषिक मत है, तो समझ लीजिए वो जो भी ईश्वर कर्तृत्ववाद का था है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चला लेना, जैसे सरकार बनाना और बना के चला लेना, बस उसी का काम है। फिर हम बच्चों ने एक गाना सुना था, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, उसका ऊपर वाले का, मेरी छतरी वाले का। आप देखिए वास्तव में जैन तत्व ज्ञान की सीमा के भीतर ही जो आ गया वो गृहित मिथ्यात्व से तो बच कर ही आता है, ध्यान में आया? और जिसके हृदय में तत्व ज्ञान बैठ गया वहाँ अग्रहित कैसे रह सकता है? वास्तव में कभी कभी ऐसा विचार आता है गुरुदेव ने जो उपकार किया है उस शब्दों में नापना भी बहुत समझ लीजिए असफल प्रयास है जिसकी छाया मात्र से गरीब निष्ठा से दूर हो जाता है। ईश्वर कर्तव्य के सामने कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है तो जीव किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई ब्रह्मा ने उत्पन्न किया हो या जीव के परिणामों को कोई दूसरा उत्पन्न करता हो, क्यों करे। जब हम लोग बाबू जी को सुना करते थे जयपुर सिविल में तो आपस में इसका मजा भी लेते थे, कोई भी बात आ रहे जो पसंद नहीं आ रहे तो हम लोग आपस में बोलते थे ये लचर व्यवस्था किसने बनाई है। शब्दावली ही विचित्र है, तो ये कोई हमारे परिणाम को दूसरा क्यों उत्पन्न करे। गुरुदेव इसमें बहुत बढ़िया तर्क देते हैं, हमारा परिणाम कोई दूसरा करे तो हम क्या करेंगे, हम निखंड बैठे रहेंगे बिना परिणाम के हो जाएंगे, समझ में आए। और फिर दूसरा अगर हमारे परिणाम को करे तो उसका कौन करे, तो वो अपना भी करेगा दूसरे का भी करेगा, दोनों कर लेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो एक तो डबल डबल करे और जो एक जो है वो फालतू बैठा रहे, ये ऐसा विधान किसने बनाया। ऐसे बढ़िया सर गुरुदेव आसानी से गले उतर जाए, इसीलिए बहुत बड़ा न्याय शास्त्र की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत इजीली गले उतर जाए। सब जगह अपना अपना काम करें। एक जयपुर शहर की बात है, बाबू जी का प्रवचन उनका था, इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि सुबह उठ के हम दूसरे के घर में जाएं, उसे कहें आपकी चाय बना दूं, आपके यहाँ झाड़ू पोंछा कर दूं, तो कल वो आएगा हमारे घर में और मैं आपकी चाय बना दूं, मैं आपका मुंह धो दूं, मैं आपको ब्रश करा दूं। ये कोई व्यवस्था है, ये कोई तरीका है सामाजिक जीवन का, पारिवारिक जीवन का है। ये व्यवस्था मंजूर है या हर कोई अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने सिस्टम के अनुसार अपने घर में काम करे, जब चाय बनाना हो जब चाय बना ले, जब झाड़ू लगाना हो तब झाड़ू लगा ले, अपना अपना काम करे, दूसरे का क्यों करे। तो जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं सबने क्यों जरूर लगाना चाहिए, इससे उसकी ठाड़ मिलती, उसकी परतें खुलती, उसका लॉजिक समझ में आता है, वो चीज गले उतरती है। परंपरा मात्र से मान लेने की गुरुदेव ने कहा या कुंड आचार्य ने कहा कि दिगंबर शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इसलिए ये तो सांप्रदायिक दासत्व है वास्तव में, समझ में आया। ये परिचोरण जी ने ये द्रव्यान युग के प्रचरणों में परीक्षा प्रधानता का जय घोष किया है। भले आप जम्मू जी के खिलाफ योजन का है, वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, इसमें न परीक्षा करने की जरूरत है और न संभव है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं है। ये तो बहुत आसानी से जरा सा विचार करने से बात गई कर सकती, तो ये सब इसके लिए तत्व स्वाध्याय के साथ तत्व विचार होना जरूरी। टोडोरजी ने बराबर सम्मिलित सर्वमुक्ता के प्रकरण में विचार प्रक्रिया बताई, ऐसा भाषित होता है, ऐसा भाषित होता है। कोई किसी से भी उत्पन्न, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न करता नहीं, किसी को माने किसी पर गर्व, अपने परिणाम को तो करते ही है उत्पन्न, समझ में आया। यहाँ वो अपरिणामी है, निष्क्रिय है, पर्याय स्वतंत्र सत कार्य से होती है, ये व्यवस्था नहीं है। तो पर्याय ही स्वतंत्र सत कारक से हो गए, ऐसी योग्यता वस्तु स्वभाव में पड़ गई, समझ में आया। वो पर्याय जब योग्यता ही द्रव्य में पड़ी, ऐसी वो शक्ति ना तब कहीं पर्याय में ऐसी स्वतंत्र योग्यता आई नहीं तो कहां से आई। समुद्र में जो तत्व है, मान लो कोई खारापन है कि गंधक है कि जो भी है, तो हिमालय के पानी में है, कोई उसकी बूंद में आएगा। जो गंगा के पानी में जो है जो तत्व, वही गंगा के पानी की एक बूंद में आएगा। जो द्रव्य में योग्यताएं हैं, कल धर्मों की चर्चा चली थी ना, तो वो भी पारिणामिक भाव है। अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव। अच्छा भेद जो है वो कौन सा भाव, भेद रूप अपने को अनुभव करना निष्ठात्म नाम का और एक भाव है। क्या बोला, अपने को भेद रूप राग रूप इत्यादि इत्यादि अनुभव करना मानना अपने चैतन्य को भूल कर भेद में वासना में ही उलझे रहना, अरे कर्ता करने की वासना में उलझे रहना, ये तो निश्चात नाम का औचित भाव है। ये आत्मा में भेद कथन दृढ़ है। गुरुदेव ने सुनी कहा था उत्पाद को भी द्रव की अपेक्षा नहीं है, प्रवचन सार को याद किया था। उत्पाद को द्रव की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं है माने वो बिना द्रव के हो गया ऐसा नहीं है। अविनाभावित तो है और एक और अविनाभावी का अर्थ पराधीनता नहीं होता। द्रव्य और पर्याय दोनों अविनाभावी है यानी एक दूसरे के बिना नहीं होते, इसका मतलब पराधीनता नहीं होता कि एक दूसरे के अधीन हो रहे। मुझे सुबह ये विचार आया था जैसे कि मान लीजिए दो मित्रों ने चर्चा की कि अभी आगामी प्रोग्राम फलानी जगह है, जयपुर में है कि द्रौपदी में है कि कोनपुर में, आप चलो हम भी चले। तो उसको जो चलने का भाव उसके निमित्त से आया, लेकिन वो अपने चलने के भाव करने में और जाने में वो स्वतंत्र है। और मान लो सामने वाला नहीं जाए तो गया, तुम जाते तो मेरा मन भी गिर गया, तो डाउन होने में भी वो स्वतंत्र है। समझ में आया? अविनाभावित्व वो वस्तु व्यवस्था है। तो द्रव्य और पर्याय ये तो कई दफे चर्चा आई है, आप लोग भी सब बहुत से लोग बाहर के हैं, सुनो बड़ी मजेदार बात। द्रव्य ही परिणमता है, समझ में आया? जब परिणमन करने में वो द्रव्य के कंट्रोल में क्या है, हैं? ड्राइवर ट्रेन चलाता है पता है ना, इंजन की तरफ से ड्राइवर ही चलाता है ना, क्या पावर है उसको, खड़ी करने का पावर है, हैं? रेड सिग्नल हो तो आगे बढ़ाने का पावर है, स्पीड कंट्रोल का पावर है, तो लेट हो गई है तो 100 की बजाय 125 पे बढ़ा दूं, हैं? क्या पावर है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएगी, कितनी स्पीड से चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, कि खड़ी रहेगी, कि क्या होगी, सब सिस्टम से तय होता है। तो भी वो करता है, तो भी वो चला है, ऐसे ही द्रव्य पर्याय का करता है। पर्याय अपने प्रकार में अपनी योग्यता से जैसी होने वाली है वैसी होती है, उसमें द्रव्य परिणमता है। ध्यान में आया? और भी है कई बातें, उदाहरण माँ संतान को जन्म देती पक्का है ना, कितना कष्ट भोगती है कितना, और इसलिए लोक में माँ की बहुत ऊंची महिमा है। क्या कंट्रोल है उसका, कैसी बुद्धि होगी, जैसे चाइल्ड मेल चाइल्ड होगा तो फीमेल चाइल्ड होगा वो डिसाइड कर सकती, अपनी मर्जी से मेल फीमेल को जन्म दे सकती है, दुबला पतला होगा कि बीमार होगा कि स्वस्थ होगा कि क्या होगा, कि माँ के हाथ में है, कौन सा कलर होगा, कैसी हेल्थ साइज होगी उसके हाथ में है, तो बड़ा होगी इंजीनियर बनेगा कि शास्त्री बनेगा ये उसके हाथ में है, तो माँ बच्चों को जन्म देती। ऐसे द्रव्य परिणमन सवारी है तो परिणमता है, ये तो वस्तु व्यवस्था में दोनों अंशों में अविनाभावित्व है, लेकिन जब दो अंश हैं तो दोनों अंशों में स्वतंत्रता भी है। इसलिए गुरुदेव ने कहा उत्पाद है तो ध्रुव है, इसलिए उत्पाद पैदा हुआ, ऐसा नहीं उत्पाद स्वभाव में तो है ना वस्तु में, उत्पाद स्वभाव से उत्पाद हुआ, व्यय स्वभाव से व्यय हुआ। इसके बारे में एक बढ़िया संस्मरण सुनिए, बाबू जी ने एक समाधान किया था, दो चार बार मैंने यहाँ बताया नहीं, जयपुर में चले था और बहुत सरकार की एजेंसी भी आते थे उसमें, उनको बाबू जी का लालचंद माई का लाभ लेने का बहुत भाव रहता था, हम लोग उन्हें बुलाते भी थे, उनके भी प्रवचन रखते थे, जब हम उपाध्याय फर्स्ट ईयर में थे तब की बात है, तब हमें एक चर्चा चली कि जय तो पर्याय को नष्ट हो गई, व्यय हो गई, अब व्यय को सत्यों को दे, समझ में आए? जो पर्याय नष्ट हो गई व्यय हो गई तो उत्पाद व्यय ध्रुव ये तीनों सत्य हैं, व्यय कहाँ सत्य है, वो तो असत हुआ, क्योंकि पर्याय तो नष्ट हो जाती है। बड़ी उलझने और जो समाधान बोल नहीं पा रहे, बाबू जी नहीं बैठे थे उनका समाधान, वो नीचे बैठे थे सुनने के लिए, लाचन भाई कर रहे थे, उन्होंने इतना सुंदर सटीक हस्तक्षेप किया जरा सा, एक बात बताओ व्यय होता है कि नहीं होता है, ये है व्यय नाम की घटना। वो कहते पर्याय को जाने को तो पर्याय चली गई, व्यय स्वभाव थोड़ी चला गया। व्यय स्वभाव चला जाए तो फिर पर्यायों का व्यय कैसे होगा? तो कल मैंने कहा ना अनिश्चितता कब नहीं है, पर्याय का क्षणवर्ती होना ये अलग बात है, और अनित्य धर्म वस्तु में त्रिकाली उसी तरह है जैसा नित्य धर्म है। सोचो विचार करो है तो ये है कि नहीं, ना है तो सत्य हो गया। अब क्या होगा, अब क्या संकार है, ऐसा समझ नहीं ये है कि नहीं, हाँ है तो ये सत्य हो गया। उत्पाद ही सत्य है, ये माने पर्यायों का विलीन होने का कि जो घटना घटती है, पर्याय विलीन होती है, वो विलीन होना वो वस्तु का स्वभाव है। भाई साहब वो व्यय भी पारिणामिक भाव है, जैसे ध्रुव पारिणामिक भाव है वैसे उत्पाद स्वभाव व्यय स्वभाव वो भी पारिणामिक भाव है। ये मोरा द्वेष और सबने दर्शन ज्ञान चारित्र और केवल ज्ञान ये तो कहता हूँ वो पर्याय की उपाधि है। अब वो पर्याय का मैटर वो अलग है, वो पर्याय को कालवर्ती अंश से लो आप। तुम्हें कहा दोपहर में कहा था कालवर्ती अंश, कल कौन सा दिन था? मंगलवार। काम गया आप मंगलवार बता दो काम गया, कल वाला 8 नवंबर वाला, तो मैं आपको पर्याय बता दूंगा कि वो काम लेगी। इनके लिए बोले बोलते तो चंदू भाई बहुत क्वेश्चन पूछते थे गुरुदेव, तो गुरुदेव बोलते थे पर्याय तो अंदर चली जाती है गुरु खुल जाती है, और राज कपूर के समान उड़ जाता है, जो चीज नहीं रही तो नहीं रही, उसकी आयु एक समय की है तो एब्सेंट हो गई। तो ये उदय उत्तम और क्षय उत्तम भाव एब्सेंट होते, सारे भाव भी जो शादी अनंत है वो प्रवाह पने की अपेक्षा शादी अनंत है। सूत्र में से देखो तो जैसे मिथ्या प्रति समय नष्ट होकर नया उत्पन्न हुआ है ऐसा अनादि से चल रहा है, जैसे केवल ज्ञान भी प्रति समय उत्पन्न होकर नष्ट हो रहे ऐसा अनंत काल तक चले। तो केवल ज्ञान भी सहायक भाव, मैं तो ये बता रहा था कि जैसे पर्दे पर्दा बिल्कुल सफेद स्वच्छ है और उससे वो फिल्म पढ़ते है ना, फिल्म प्रोजेक्टर से फिल्म उससे दिखाते हैं तो वो चित्र आते जाते हैं नाचते रहते हैं, पर्दा को अप्रभावित रहता है। ऐसे ज्ञान पटल, इसमें आप ज्ञान परिणाम सहज ज्ञान को भी ले सकते हैं, त्रिकाली ज्ञान को तो निश्चय है उसमें तो कौन दिखता है, गजब है। जो ज्ञान शक्ति है वो जानती नहीं है, क्या बोला, जो ज्ञान शक्ति है उसमें जानने का कार्य नहीं होता है, उससे जानने का कार्य होता है। उसको त्रिकाली उपादान कारण में निश्चय कारण कर्म कार कर्म इत्यादि नाम से कहते, और भेद करके देखो तो ये सद्भुत व्यवहार द्रव्य से पर्याय होती है ध्रुव में से आती है, ये सब सद्भुत व्यवहार का कथन है। फिर ये चर्चा तो अनंत टाइप की है, ये तो द्रव्य उन परिणामों से अनंत है, किसी को उत्पन्न नहीं करता। अभी ये कर्ता करने की बात आई थी, नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होता है। कर्म के आश्रय से होता है क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? स्वर्ण पदार्थ उदाहरण समझे, स्वर्ण पदार्थ है, अंगूठी उसका कर्म है, सोने की अंगूठी बनी ना है, तो स्वर्ण एक कर्ता हुआ और अंगूठी उसका कर्म हुआ। स्वर्ण को कर्ता कर्म कहना वास्तव में ये अनुचरित सद्भुत व्यवहार में कथन है, और सुनार उसका कर्ता है ये असद्भुत व्यवहार का कथन है, अनुचरित असद्भुत व्यवहार का कथन पर द्रव्य को बताए। स्वर्ण अंगूठी के आदर है, इसका मतलब ये है अंगूठी तो एक पर्टिकुलर पर्याय अपन ने फोकस किया, अंगूठी नहीं होगा तो कंगन होगा, कंगन नहीं होगा तो हार होगा, तो दड़ी होगी, तो बिस्कुट होगा, कोई न कोई परिणाम तो होना ही चाहिए, वो द्रव्य रहेगा कहाँ, तो अभेद अपन में हिंदुस्तान कहाँ रहेगा, किसी को अमेरिका से भारत आना हो और वो एयरलाइंस वाले को फोन करे या मेल करे मेरे को इंडिया का टिकट दे दो, मेरे भाई तो क्या बोलेगा, इंडिया में कहाँ का देख रहे, क्या मतलब हम इंडिया जाना चाहते, हम भेद नहीं करते, हमें तो इंडिया में जाना है। ऐसा उस समय हुआ था जब ये बंबई डूब गई थी, कितने साल पहले की बात है, 8-10 साल हो गए, बहुत साल हो गए, 5 में हम बदले गए भाई साहब वहाँ 20 की जगह जो है फ्रैंकफर्ट में। और उस समय अब एक भारत याद आया तो कहीं का तो मिल जाए, दिल्ली का मिल जाए तो अलीगढ़ चले जाएंगे, अहमदाबाद का मिल जाए तो सोनगढ़ चले जाएंगे, बम्बई तो बंद थी, फिर ग्वालियर का मिल जाए, भोपाल का मिल जाए, फिर आखिर चेन्नई का मिला और वो भी 18-20 घंटे बाद फोन, ये आए तो किसी जगह भेद नहीं होंगे, अनंत गुण नहीं होंगे तो द्रव्य कहाँ रहेगा, परिणाम नहीं होगा तो द्रव्य रहेगा कहाँ, समझ में आया। इस अपेक्षा से बोलते हैं कर्ता अपने कर्म के आश्रित रहता है, उसका अस्तित्व देखो दोनों बातें अलग अलग हैं, द्रव्य पर्याय को कथन की भिन्नता की अपेक्षा देखो तो द्रव्य द्रव्य में रहता है, पर्याय पर्याय में रहती है, शरीर अखंड है, एक आँख आँख में रहती है, कान कान में रहती है, नाक नाक में रहती है, एक पूरा उंगली का वो अपने में रहता है, एक दूसरे में नहीं जाता है, और अखंड शरीर अखंड बने रहता है, ऐसे द्रव्य अखंड अपने स्वरूप में अखंड स्वरूप में रहता है, लेकिन वो खंड सर्वथा न हो रहे शून्य हो रहे तो खंडों में व्याप्त हुए बिना वो अखंड कहलाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक अखंड राष्ट्र है, तो कश्मीर भी तो है कि नहीं, और कन्याकुमारी भी तो है कि नहीं, और दोनों के बीच में लगभग 4,000 किलोमीटर की लंबाई है कि नहीं, और फिर बीच में बहुत सारे इनके स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह है कि नहीं, तो अगर अगर हम कश्मीर और कन्याकुमारी ऐसा अंत भी न हो क्षेत्र का, तो फिर ये कैसे कहा जा सकेगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत एक राष्ट्र है, तो वहीं भी पर लिखा रहता है, ख्याल में आए ना, ऐसे द्रव्य अपने परिणामों में अखंड बने व्याप्त रहता है, बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या है ये, भेद अभेद दोनों तरफ से है, कर्ता कर्म के आश्रय से रहता है, यानी कर्ता की जो अगर एक बात हो उसको कर्ता कहने कर्म सापेक्ष है, ये कर्म माने द्रव्य कर्म की बात नहीं, जल कर्म की बात नहीं, ये तो छह कारक में जो कर्ता कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्ता है तो उसकी अवस्था उसका परिणाम वो उसका कर्म उसी बात, हाँ 200 कारक है, तो समझना भाई बहुत सुंदर प्रकरण है, कर्ता कर्म के आश्रय से रहता है तो उस द्रव्य को कर्ता कहना, जो एक ऐसी ज्ञान दी नहीं है, ज्ञान स्वभाव को ज्ञान संज्ञा देना वो तो निश्चित है, ये किसी सदी का काम है, ये को जानता है इसलिए भले उसको ज्ञायक कहा जाए, ख्याल में आए ना, लेकिन उसका स्वभाव उसका गुण धर्म उसकी चेतना चेतना का सफल प्रकाशक परिणाम वो स्वाधीन निर्देश है, उसका वेद से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये क्रम अशुद्धता यानी वे का केंद्रित मात्र भी ज्ञान में नहीं आता, लेकिन किसी पदार्थ को हमने ये बोला इसका मतलब क्या है, ये उसकी ये घड़ी है वो घड़ी है ये है उसकी घड़ी संज्ञा या निरपेक्ष है, कोई जाने के न जाने वो तो घड़ी है, लेकिन ये संज्ञा वो ज्ञान की सापेक्षता है, ज्ञान की तरफ से उस पदार्थ का नाम ये ऐसा बोला जाता है, समझ में आया, तो जैसे साले जैनों ये सापेक्ष संज्ञाएं हैं, पिता पुत्र ये सापेक्ष संज्ञाएं हैं, ऐसे ज्ञान देव भी सापेक्ष संज्ञा है, ज्ञान देव में हमने रिलेशन करता कर वास्तव में जानना भी क्रिया है, व्यक्ति क्रिया जानने को भी क्रिया वो स्वाभाविक क्रिया, व्यक्ति क्रिया का स्वभाव भूत होने से निषेध नहीं किया जाता, किसमें है 71 दादाजी टीका में है, काम से कहे तो व्यक्ति के लिए
तो समझने की कोशिश करना। तो द्रव्य को ये द्रव्य स्वर्ण अखंड वस्तु है, ये उसका नित्य स्वरूप है।
और उसमें अंगूठी हो कि न हो, चूड़ी बने कि नहीं बने, हार में है कि कंगन में है कि क्या में है, उससे स्वर्ण के स्वर्णत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्वर्ण का स्वर्णत्व स्वरूप निरपेक्ष है। ये स्वर्ण को कर्ता बोला तो कोई कर्म होना नहीं, कर्म का कर्ता है, इसलिए कर्ता कर्म के आश्रय है। आश्रय का मतलब यहाँ पराधीन, वो कर्म पर है ही नहीं तो पराधीन कैसे हो? पराधीन तो तब होगा जब पर वस्तु में उसका कारण कार्य बना जोड़ा जा रहा है। कर्म तो अपने ही अंत है ना, अपना ही परिणाम है ना, तो वो पराधीन का है। लेकिन जो भेद करके बोला अपन ने तो कर्ता कर्म के आश्रित है, यानी कर्ता को कर्ता कहने उसको संज्ञा देने कर्म सापेक्ष है, पर्याय की तरफ से उसको कर्ता कहा जाए। एक पर्याय को जरा गौर करो, पर्यायार्थिक चक्षु को सरलता बंद करो, एक चौधरी दादा के एंगल से अब द्रव्य को बोलो कर्ता क्या करता है, पर्याय को तो बहुत जल्दी है ना, उसको देखा ही नहीं, पर्याय को पर्याय में डाल दिया, पर्याय का सत्कार पर्याय में है, अब द्रव्य का आएगा करता, तो फिर द्रव्य क्या हो गया? अब वो चित्त पर न करता ना, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का है परिवेश। मुझे तो इसकी पंक्ति बार बार ही बोले ना, कहनी पड़ती, वो नित्य के साथ व्यवहार होते ही है ना। बताए मर्म अरे यह कौन तुम्हारे दिन वीना, विधाता शिव पथ के तुम्हें पड़ा मैं सत्तर दल के हम। ये जो हमारी परिस्थितियाँ ली तो पर्याय की तरफ से द्रव्य की कर्ता संज्ञा है, समझ में आया, और पर्याय स्वयं कर्म है, उसमें भी भेद खड़ा करो तो स्वयं करता है स्वयं कर्म है, पर यहाँ द्रव्य करता है। कर्म कर्ता के बिना कर्म कैसे होगा? इसलिए कर्ता यह 311 जाता है नियम से कर्म के आश्रय से, यानी कर्म का अवलंबन लेकर, और ये पूरी वस्तु व्यवस्था पे लागू पड़ता है जब चेतन पे। यहाँ अवलंबन का मतलब जैसे सम्यक दर्शन में पर्याय अहम करती है कि मैं ध्रुव हूँ, ज्ञान उसके सम्मुख होकर स्वसंवेदन करता है, चाहे तुम्हें उसमें लीनता होती है, मुक्त मार्ग वाला अवलंबन नहीं, पर का अवलंबन छोड़ के स्व का अवलंबन लिया, इसी को चैतन्य पदार्थ में चेतना में संपन्न होते ये सब मंगलकारी, समझ में आया। और अमंगलकारी भी चेतना में संपन्न होते, पर वो अपना मानना वो भी चेतना नहीं होता है, जड़ का होता है वो वाले अवलंबन की, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अवलंबन की बात नहीं। यहाँ तो कैसा कर्म रूप पढ़ने में छुआ यही अवलंबन है, स्वर्ण ने अंगूठी ने स्वर्ण का अवलंबन किया है, स्वर्ण अंगूठी पर अवलंबन करके रहता है। सोचो अगर स्वर्ण के अंगूठी नहीं बने, चूड़ी नहीं बने, हार नहीं बने, तो लोग कहा उसके पीछे भागे हैं इत्यादि इत्यादि, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देती जाए, यानी दो के बीच में अपनी वस्तु में ही सारी व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था भी अपने में है, कर्ता की भी अपने में, और उपलक्षण से बाकी के चार कारक भी समझ लेना, करण भी अपने में है, संप्रदान भी अपने में है, अपादान भी अपने में है, अधिकरण भी अपने में है। अपना साधन स्वयं है, अपने लिए करता है, विफल के लिए करता है। सोने में अंगूठी रूप परिणमन हुआ, वो अंगूठी उसने स्वर्ण ने अपने आप को दी हुई है, ये तो लोक का व्यवहार है, ये किसी दूसरे ने ले ली, इसने हाथ में पहन ली, किसी को गिफ्ट कर दी, ये तो दुनिया की दुनियादारी की बातें हैं, संसार बनाने वाली। समझ में आया, समय अपना हो गया है, मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है, और अगले वर्ष जब मौना का शिविर लगेगा तो मैं आशा करता हूँ कि पूरे समय काल की सीडी जो है लगभग 500 से अधिक, 550 से अधिक लेक्चर होंगे, तो वो आपके बीच में उपलब्ध होगी। अब अपन कल दोपहर में जब मिलेंगे तो 312 और 13 वस्तु व्यवस्था का वर्णन 4 गाथाओं में, फिर 12 और 13 गाथा में अज्ञान की महिमा होता है। थोड़ी चर्चा तो अपन दोपहर में कर चुके हैं, लेकिन इसकी विशेष चर्चा कल दोपहर में करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं।